एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम रूसी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने अपने समय में कह सकते हैं कि विचारों की दुनिया में भूचाल ला दिया था।
हाँ, और जिसका असर बाद तक महसूस किया गया। हम बात कर रहे हैं इवान तुर्गिनेव के क्लासिक नॉवल पिता और पुत्र की।
जी, रूसी में उत्सी इदेती। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो जैसे विचारों का एक अखाड़ा है, पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी परंपरा।
और दूसरी तरफ वो नई सोच जिसे उस समय शून्यवाद या निहिलिज्म कहा गया।
हाँ, और इस शब्द को इसी उपन्यास ने पॉपुलर बनाया।
तो इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा लेखक और उनके समय के बारे में जानना शायद जरूरी है। इवान तुर्गिनेव 1818 से 1883।
जी, वो तोल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की के ही समय के थे, पर उनका अंदाज थोड़ा अलग था। उनका फोकस किरदारों के मनोविज्ञान पे ज्यादा रहता था, मतलब बहुत बारीकी से वो इंसानी मन की परतों को खोलते थे।
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहते हैं शायद इसे, और उनकी भाषा भी बड़ी काव्यात्मक सी लगती है।
हाँ, गीतात्मकता थी उसमें, और एक कॉन्सेप्ट उनसे जोड़ा जाता है, अतिरेकी मनुष्य का, सुपरफ्लूज मैन।
अच्छा, ये क्या था?
मतलब वो पढ़ा लिखा संवेदनशील इंसान जो समाज में कहीं फिट नहीं हो पाता, थोड़ा अलग थलग बेकार सा महसूस करता है।
तुर्गिनेव खुद भी पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे, यूरोप में रहे भी काफी।
सुना है उनकी एक किताब ए स्पोर्ट्समैन स्केचेस ने दास प्रथा खत्म करने में भी मदद की थी।
हाँ, परोक्ष रूप से। और पिता और पुत्र तो आया ही ऐसे समय पर, 1862 में पब्लिश हुआ। ठीक एक साल पहले 1861 में रूस में दास प्रथा खत्म हुई थी।
तो मतलब पूरा समाज एक बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल, पुरानी व्यवस्था ढह रही थी, नए विचार आ रहे थे, और ये उपन्यास उसी वैचारिक संघर्ष को दिखाता है।
खासतौर पर दो पीढ़ियों के बीच, एक तरफ जिन्हें पिता कहा गया, 1840 के दशक वाले उदारवादी रोमांटिक,
हाँ, कला सिद्धांत इन सब में यकीन रखने वाले, और दूसरी तरफ बेटे 1860 वाले एकदम रेडिकल भौतिकवादी जो हर पुरानी चीज को खारिज कर देना चाहते थे।
और यहीं से वो शब्द आया शून्यवादी निहिलिस्ट।
जी, उपन्यास में ही आर्कादी जो युवा पीढ़ी का है वो समझाता है कि शून्यवादी वो है जो किसी अथॉरिटी को नहीं मानता।
अच्छा।
हाँ, किसी सिद्धांत को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेता कि सब मानते आए हैं, हर चीज पर सवाल उठाओ, तर्क से परखो।
तो उपन्यास का जो मूल सवाल है वो यही बनता है कि क्या सिर्फ तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन क्या वो काफी है?
बिल्कुल, क्या वो प्रेम परिवार परंपरा यहाँ तक कि मौत जैसी हकीकतों का सामना कर सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है।
तो चलिए कहानी में चलते हैं, कहाँ से शुरू होती है ये
कहानी? शुरू होती है 1859 की गर्मियों में रूस के गांव में। एक जमींदार है निकोलाय पेत्रोविच किरसानोव, सीधे साधे भले आदमी है, थोड़े से मतलब प्रैक्टिकल कम है, उन्हें संगीत कविता ये सब पसंद है। वो अपने बेटे आर्कादी का इंतजार कर रहे हैं।
बेटा यूनिवर्सिटी से लौट रहा है।
हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग से।
हाँ।
तो निकोलाय थोड़े उत्साहित भी हैं, थोड़े नर्वस भी कि बेटा अब कैसा हो गया होगा।
और बेटा आता है आर्कादी,
आर्कादी निकोलायविच किरसानोव, पर अकेला नहीं आता।
अच्छा।
उसके साथ है उसका दोस्त, और सिर्फ दोस्त नहीं, उसका गुरु, उसका आइडियल एवगेनी वसिलेविच बाजारोव।
बाजारोव, यही है वो शून्यवादी।
हाँ, यही है मुख्य शून्यवादी किरदार। आते ही पता चल जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, लंबा कद, आत्मविश्वास से भरा हुआ, तेज नजरें, तेज दिमाग, मेडिकल का छात्र है, और बड़े गर्व से कहता है मैं शून्यवादी हूँ।
उसका रवैया कैसा है?
थोड़ा रूखा, सामाजिक रस्मों की कोई परवाह नहीं, अपनी बुद्धि पर गजब का भरोसा।
तो उनका मैरिनो एस्टेट प्रोफेशनल सिर्फ मेहमानों का आना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझिए कि एक पूरी विचारधारा उनके साथ घर में घुस आई है, एक ऐसी सोच जो किरसानोव परिवार की शांत दुनिया में हलचल मचाने वाली है।
उनकी दुनिया जहाँ कविता पढ़ी जाती है, संगीत सुना जाता है।
हाँ, जहाँ प्रकृति की सुंदरता को सराहा जाता है। अब उस दुनिया का सामना बाजारोव के ठंडे वैज्ञानिक तर्क से होने वाला है।
यही हमें पहला टकराव देखने को मिलता है ना, किरदारों के बीच।
बिल्कुल, एक तरफ तो निकोलाय है जो थोड़े नर्म है, वो कोशिश करते हैं बेटे के नए विचारों को समझने की, थोड़ा बदलने को भी तैयार दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें दुख भी होता है।
और दूसरी तरफ उनके भाई हैं पावेल पेत्रोविच किसानोव।
हाँ, निकोलाई के बड़े भाई, और वो बिल्कुल अलग हैं, एकदम सलीकेदार, सिद्धांतों वाले, एरिस्टोक्रेट, अंग्रेजी तौर तरीकों के प्रशंसक।
उन्हें तो बाजारोव बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा।
एक आंख नहीं भाता बजरोव का वो अखड़पन, हर चीज का मजाक उड़ाना, खासकर कला और सुंदरता के प्रति उसका तिरस्कार। पावेल को लगता है कि ये आदमी सब बर्बाद कर देगा।
उनके बीच बहसें भी होती हैं।
जबरदस्त बहसें होती हैं। वो उपन्यास के वैचारिक केंद्र में है। पावेल पुराने मूल्यों की वकालत करते हैं, बजरोव उन्हें सिरे से नकारता है।
और बजरोव क्या कर रहा होता है सबके बीच?
वो अपना ज्यादातर वक्त मेंढकों को चीरने फाड़ने में लगाता है।
डाइसेक्टिंग?
ओह, ये सिर्फ उसका मेडिकल काम है या इसका कोई मतलब भी है?
मतलब है, ये प्रतीक है उसके नजरिए का, जीवन को एकदम भौतिक जैविक स्तर पर देखना। कोई रहस्य नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ मैटर और केमिकल रिएक्शंस।
वो कहता भी है ना कि प्रकृति मंदिर नहीं, वर्कशॉप है।
हाँ, प्रकृति मंदिर नहीं बल्कि एक कार्यशाला है और मनुष्य उसमें काम करने वाला है। सोचिए ये बात उस पीढ़ी को कैसी लगी होगी जो प्रकृति में ईश्वर देखती थी।
और घर में एक और किरदार है, फिनिच का। जी, फिनिच का। वो निकोलाई की युवा प्रेमिका है, किसान लड़की। निकोलाई का उससे एक बेटा भी है।
निकोलाई उससे प्यार तो करते हैं पर
समाज के डर से शादी करने या रिश्ते को खुलकर मानने में हिचकिचाते हैं। ये उस समय की सामाजिक सच्चाई दिखाता है। बजरोव का बर्ताव फिनिचका के साथ बड़ा सहज रहता है, बराबरी का। ये बात भी पावेल को पसंद नहीं आती।
और आर्काडी, वो कहाँ है इस समय?
आर्काडी बेचारा फंसा हुआ है। वो बजरोव का चेला बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, शून्यवादी बातें करता है, चाचा पावेल से बहस करता है,
लेकिन
अंदर से वो अपने परिवार से, अपनी जड़ों से जुड़ा है। उसे प्रकृति पसंद है, कविता पसंद है। वो बजरोव जितना कठोर नहीं बन पाता, ये कशमुकश उसे दिलचस्प बनाती है।
कहानी फिर आगे कैसे बढ़ती है? कोई मोड़ आता है?
हाँ, अहम मोड़ तब आता है जब बजरोव और आर्काडी पास के प्रांतीय शहर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है अन्ना सेर्गेयेवना ओडिनसोवा से।
अन्ना ओडिनसोवा, ये एक महत्वपूर्ण किरदार है ना?
विधवा है और सबसे बड़ी बात, बहुत स्वतंत्र और बुद्धिमान है। अपनी शांति, अपनी स्थिरता को वो सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं।
बजरोव से कैसे मिलती हैं वो?
उन्हें बजरोव की बातें, उसका आत्मविश्वास, उसकी बुद्धि आकर्षित करती है। वो भीड़ से अलग है। अन्ना को ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो वो उन्हें अपने एस्टेट निकोल्सकोए आने का न्योता देती हैं।
और निकोल्सकोए में क्या होता है?
निकोल्सकोए में ही कहानी का भावनात्मक केंद्र है। बजरोव, जो प्रेम और रोमांस को बकवास समझता था, जो भावनाओं को कमजोरी मानता था,
वो खुद प्रेम में पड़ जाता है।
हाँ, वो अन्ना के प्रति बहुत गहराई से आकर्षित महसूस करने लगता है। उसका वो तर्कवादी कवच, वो टूटने लगता है।
ये तो उसके अपने ही विचारों के खिलाफ हो गया।
बिल्कुल, वो बेचैन हो जाता है और एक दिन वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और अन्ना से अपने प्रेम का इजहार कर देता है।
और अन्ना का क्या रिएक्शन होता है?
अन्ना, वो आकर्षित तो है बजरोव से, पर उसे अपनी शांति ज्यादा प्यारी है। वो किसी भी तरह की इमोशनल उथल पुथल से बचना चाहती है, तो वो बहुत विनम्रता से लेकिन साफ साफ मना कर देती है।
ये तो बजरोव के लिए बड़ा झटका होगा।
बहुत बड़ा। उसका अहंकार टूट जाता है। उसे लगता है उसे ठुकराया गया है, अपमानित किया गया है।
और आर्काडी, उसका क्या चल रहा है वहाँ?
आर्काडी का झुकाव अन्ना की छोटी बहन कात्या की तरफ हो जाता है। कात्या शांत है, गंभीर है, उसे संगीत, प्रकृति पसंद है। आर्काडी को उसमें अपनापन दिखता है। वो धीरे धीरे बजरोव के असर से बाहर आने लगता है। उसे समझ आता है कि वो शून्यवादी नहीं बन सकता।
तो बजरोव वहां से कहां जाता है?
अपमानित महसूस करता हुआ बजरोव सीधा अपने माँ बाप के घर जाता है।
ये वाला हिस्सा बहुत मार्मिक बताया जाता है।
है भी। उसके पिता वसीली इवानोविच एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर है, पुराने ख्यालों के, पर बेटे पर नाज है। माँ अरीना व्लासेवना सीधी साधी महिलाएं हैं जिनका पूरा जीवन अपने बेटे एनुषा के लिए है।
वो लोग तो बहुत प्यार करते होंगे उससे।
बेपनहा, एकदम निश्चल, बिना शर्त वाला प्यार। लेकिन बजरोव, उसे ये सब रास नहीं आता। उसे ये भावनाएं बचकानी लगती हैं, कमजोरी लगती हैं।
मतलब वो इस प्यार को समझ नहीं पाता या स्वीकार नहीं कर पाता।
हाँ, कुछ ऐसा ही। उसका ठंडा तर्कवादी नजरिया उसे इन रिश्तों की गर्माहट महसूस नहीं करने देता। वो वहां मुश्किल से 3 दिन रुकता है और चला जाता है,
अपने माँ बाप का दिल तोड़कर।
बिल्कुल, यह दिखाता है कि उसका दर्शन उसे कितना अकेला कर चुका है।
फिर वो वापस मैरिनो जाता है, आर्कादी के पास।
हाँ, बेजरोव और आर्कादी मैरिनो लौटते हैं, पर अब दोस्ती में वो बात नहीं रही, एक दूरी आ गई है। आर्कादी अब खुलकर बेजरोव से असहमत होता है
और तनाव बढ़ता है।
तनाव चरम पर पहुंचता है जब पावल किरसानोव बेजरोव को फिनिच्का को किस करते हुए देख लेते हैं।
ओहो, पावल के लिए तो ये
बर्दाश्त से बाहर, ये उनके लिए सिर्फ एक किस नहीं, उनके भाई के सम्मान पर, उनके क्लास की इज्जत पर हमला है। पावल पुराने विचारों वाले हैं, वो बेजरोव को द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज करते हैं।
ड्यूअल उस जमाने में।
हाँ, ये अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। बेजरोव भी इसे मजाक समझता है, उसे ये रोमांटिक रिवाज पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो चैलेंज स्वीकार कर लेता है।
और ड्यूअल होता है?
होता है, और वो एक तरह का मजाक ही बनकर रह जाता है। बेजरोव पावल को पैर में हल्की सी गोली मार देता है, और फिर मजे की बात ये कि डॉक्टर होने के नाते खुद ही पावल का इलाज भी करता है।
ये तो पूरी स्थिति की निरर्थकता को दिखाता है।
बिल्कुल, न पावल के पुराने सिद्धांत कुछ साबित कर पाए, न बेजरोव का नया तर्कवाद, सब खोखला सा लगता है।
इसके बाद तो आर्कादी और बेजरोव का साथ रहना मुश्किल हो गया होगा।
हाँ, उनका रास्ता अलग हो जाता है। उनकी आखिरी बातचीत होती है जिसमें आर्कादी साफ कहता है कि वो बेजरोव जैसा नहीं बन सकता, वो एक सामान्य जीवन चाहता है, कात्या से शादी करना चाहता है। बेजरोव उसे जाने देता है। अब वो मैरिनो में अकेला है और वहां से चला जाता है।
तो उपन्यास का अंत कैसे होता है? एक तरफ आर्कादी हैं, दूसरी तरफ बेजरोव।
अंत में दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ मैरिनो में शादियां होती है, आर्कादी की कात्या से
और निकोलाई की फेनिचका से।
हाँ, निकोलाई भी हिम्मत करके फेनिचका से शादी कर लेते हैं। तो वहां जीवन है, परिवार है, प्रेम है, निरंतरता है, ठीक वो चीजें जिन्हें बेजरोव नकारता था।
और बेजरोव?
बेजरोव अपने माँ बाप के पास लौटता है, पर अब उसमें वो आग नहीं है, वो बुझा हुआ, अकेला, दिशाहीन है। वो डॉक्टर के तौर पर काम करने की कोशिश करता है, पर बिना किसी जोश के।
और फिर?
फिर एक दिन टाइफस के एक मरीज की ऑटोप्सी करते हुए गलती से उसकी अपनी उंगली कट जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है।
ये तो बहुत बड़ी विडंबना है।
हाँ, वो आदमी जो विज्ञान का पुजारी था, वो एक अनदेखे जीवाणु से हार जाता है। उसकी मौत भी बड़ी, मतलब साधारण सी होती है, कोई हीरोइज्म नहीं।
मरते समय क्या वो बदलता है थोड़ा?
थोड़ा सा। उसका अहंकार कुछ कम होता है। वो पिता से कहता है कि माँ के लिए प्रार्थना करवा देना, अन्ना को बुलाने के लिए कहता है।
अन्ना आती है।
अन्ना आती है। हाँ। पर दया से, प्रेम से नहीं। बेजरोव के आखिरी शब्द रूस को उसकी जरूरत होने के बारे में है, पर उनमें अब वो दम नहीं लगता। वो एक तरह से अपनी हार मान लेता है।
और उपन्यास का एकदम अंत?
एकदम अंत में एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बेजरोव की कब्र पर उसके बूढ़े माँ बाप आते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका वो सरल अटूट प्रेम वही है जो आखिर तक बचता है।
तो ये उपन्यास कई स्तरों पर बात करता है। पहला तो वही पीढ़ियों का संघर्ष।
हाँ, पिता बनाम बेटे,
उदारवाद बनाम कट्टरपंथ,
और तुर्गेनेव किसी का पक्ष नहीं लेते, दोनों की कमियां और खूबियां दिखाते हैं।
वो किसी को हीरो या विलेन नहीं बनाते। पाठक बेजरोव की ईमानदारी को भी समझता है और पावेल के दुख को भी।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा है शून्यवाद का। क्या सिर्फ तर्क काफी है? उपन्यास बेजरोव के अंत के जरिए जैसे दिखाता है कि शायद नहीं, प्रेम, परिवार, भावनाएं, इनकी भी जगह है।
और प्रेम तो जैसे एक कसौती की तरह काम करता है पूरे उपन्यास में।
सही कहा, वो हर किसी को परखता है। पावेल प्रेम में हारा, निकोलाई और आर्कादी को प्रेम में शांति मिली, और बेजरोव जो उसका मजाक उड़ाता था उसी के आगे टूटा।
इसके अलावा वो अभिजात वर्ग का पतन भी दिखता है पावेल के जरिए।
हाँ, उसके सिद्धांत, उसका ड्यूएल सब पुराने पड़ चुके लगते हैं। और रूस का भविष्य क्या होगा, बेजरोव का रास्ता या आर्कादी का, ये सवाल भी उठता है।
और प्रकृति, उसका क्या रोल है?
प्रकृति सुंदर है पर तटस्थ है, इंसानी झगड़ों से उसे कोई लेना देना नहीं। और अंत में प्रकृति का ही एक छोटा सा अंश, एक बैक्टीरिया, बेजरोव को हरा देता है।
तुर्गेनेव की लिखने की शैली की बात करें तो वो किरदारों के मन में बहुत गहरे उतरते हैं।
हाँ, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। वो दिखाते हैं कि किरदार क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थर्ड पर्सन नरेटर है जो सब जानता है पर अपनी राय नहीं देता।
और संवाद?
संवाद बहुत दमदार हैं। किरदारों की सोच, उनका टकराव, सब बातचीत से ही सामने आता है।
कुछ प्रतीक भी हैं, जैसे मेंढकों को काटना।
हाँ, वो बज़रोव के भौतिकवाद का प्रतीक है, पावेल के अंग्रेजी तौर तरीके, पुरानी एरिस्टोक्रेसी के, ड्यूल पुरानी दुनिया की मौत का।
कुछ लाइनें तो याद रह जाती हैं, जैसे वो शून्यवादी की परिभाषा।
एक शून्यवादी वह व्यक्ति है जो किसी भी सत्ता के सामने नहीं झुकता। हाँ, ये उस पीढ़ी का मैनिफेस्टो जैसा लगता है।
या बज़रोव का वो कहना कि प्रकृति मंदिर नहीं, वर्कशॉप है।
बिल्कुल, ये उस समय के रोमांटिक विचारों को सीधी चुनौती थी।
और पावेल का सिद्धांतों पर जोर देना।
हाँ, पुराने जमाने के लोग सोचते हैं कि सिद्धांतों के बिना जीना असंभव है, ये पिताओं की सोच थी।
लेकिन सबसे ज्यादा शायद वो आखिरी पंक्तियां असर करती हैं, बज़रोव की कब्र पर उगे फूलों के बारे में।
हाँ, क्या उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू निष्फल हैं? क्या प्रेम, पवित्र समर्पित प्रेम, सर्वशक्तिमान नहीं है? वे हमें शाश्वत सुलह और अंतहीन जीवन के बारे में भी बताते हैं। ये जैसे शून्यवाद का जवाब है प्रकृति और प्रेम की तरफ से।
ये उपन्यास पढ़ने के बाद एक उदासी सी रह जाती है, खासकर बज़रोव के लिए।
हाँ, तुर्गेनेव की सहानुभूति सभी के साथ है। बज़रोव की बुद्धि अच्छी लगती है, पर उसका अकेलापन, उसका अहंकार, वो दुख देता है। उसका अंत वाकई एक ट्रेजेडी है।
उपन्यास हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता।
नहीं, बल्कि सवाल छोड़ जाता है, प्रगति क्या है? क्या अतीत को पूरी तरह नकारा जा सकता है? क्या विचारधाराएं रिश्तों से बड़ी हैं?
अंत में तो वही लगता है कि बज़रोव के माता पिता का वो साधारण सा प्रेम ही सबसे स्थायी चीज है।
हाँ, शायद वही है।
तो ये उपन्यास शायद यही याद दिलाता है कि विचार अपनी जगह है, लेकिन जीवन सिर्फ विचारों से नहीं जिया जा सकता। इंसान के रिश्ते, उसकी भावनाएं, इनका महत्व हमेशा रहेगा।
और ये भी कि पीढ़ियों का संघर्ष तो चलता रहेगा, पर शायद असली रास्ता टकरावों में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और संतुलन बनाने में है। जीवन शायद इसी तरह आगे बढ़ता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।